All good preaching has certain characteristics.
सभी अच्छे प्रचार में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं.
Number one.
पहला.
Comes from the Bible.
बाइबल में से आता है ये.
Number two.
दूसरा.
It has a clear subject and purpose.
उसका स्पष्ट विषय और उद्देश्य होता है.
Number three.
तीसरा.
It has unity, order and progression.
इसमें एकता, क्रम और प्रगति होती है.
It must be simple.
यह सरल होना है.
And it must be clear.
और यह स्पष्ट होना है.
All good preaching.
सभी अच्छे प्रचार.
Has a very simple structure.
उसका बहुत सरल ढांचा होता है.
And has a very clear subject.
और बहुत स्पष्ट विषय होता है.
And it has order.
और उसमें क्रम होना जरूरी है.
But that's not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
That's just the skeleton. You know the skeleton?
यह सिर्फ बाहरी ढांचा है.
If a body doesn't have a skeleton,
अच्छा उसकी सिर्फ ये बाहरी
doesn't have bones, you know,
हड्डियां हैं.
What will happen?
क्या होगा? हड्डियां नहीं होंगी तो शरीर गिर जाएगा.
Now, a lot of sermons are like that.
बहुत सारे संदेश इसी प्रकार होते हैं.
They're all over the place. But a good message has order and structure.
अच्छे संदेश में क्रम और ढांचा होता है.
If your sermon doesn't have a skeleton,
यदि आपके संदेश में कंकाल नहीं है,
people will not be able to follow you.
लोग आपका अनुसरण नहीं कर पाएंगे.
It doesn't have to be complicated.
यह विरोधाभासी नहीं होना है.
You're not preaching to university graduates.
आप विश्वविद्यालय के पास किए हुए लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं.
You're not preaching to American.
आप अमेरिकी लोगों को प्रचार नहीं कर रहे हैं.
You're preaching to Indian.
आप भारतीय लोगों को प्रचार कर रहे हैं.
And you must understand their condition.
आपको उनकी स्थिति समझना आवश्यक है.
Now India.
भारत.
And China,
चीन,
has not had a history of thinking logically or orderly.
उनके पास जो इतिहास है वह तर्कपूर्ण तरीके से वो लोग और क्रम से सोचते हैं.
They think according to stories.
वो कहानियों के अनुसार तरह से सोचते हैं.
That's the way it is in China.
चीन में.
That's the way it is in India.
और उसी प्रकार से भारत में भी लोग.
Now the Gospels are written as stories. Matthew, Mark, Luke, John.
जो सुषमाचार की पुस्तकें हैं वो कहानियों में लिखी गई.
But Paul and Peter's writings are written in a logical order.
लेकिन पत्रस और पौलुस के जो पत्र हैं वह तर्कपूर्ण तरीके से लिखे गए.
But you have to preach all kinds of scripture.
आपको हर प्रकार के खंड का प्रचार करना है.
And you need to understand how to arrange it.
और आपको समझना जरूरी है कैसे इसको क्रम में रखें.
And then how to explain it.
और कैसे इसकी व्याख्या करें.
And then how to apply it.
और कैसे इसको लागू करें.
In the power of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा की सामर्थ में.
Now I want to talk about interpreting the Bible.
अब हम बाइबल के अनुवाद के विषय में बात करेंगे.
If you're going to properly preach the Bible, you must properly interpret the Bible.
यदि आप बाइबल का सही तरीके से प्रचार करना चाहते हैं तो आपको बाइबल का सही तरीके से अनुवाद करना आवश्यक है.
Now, why is this important?
यह क्यों आवश्यक है?
Now, the Bible is an old book.
बाइबल एक पुरानी पुस्तक है.
It's written over thousands of years.
यह हजारों वर्ष के दौरान लिखी गई.
And it's written by many different people.
और यह अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई बहुत सारे.
Some parts of it are plain, some parts of it are not so plain.
उसके कुछ खंड बराबर स्पष्ट हैं और कुछ स्पष्ट नहीं हैं.
And you have a great responsibility.
और आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है.
Second Timothy 2.
दूसरा तिमोथी दो अध्याय.
To handle accurately the word of God.
परमेश्वर के वचन का ठीक ठीक उपयोग करने की.
And if you don't interpret the Bible properly,
यदि आप बाइबल का सही अनुवाद नहीं करते,
you will teach error.
आप गलत शिक्षा देंगे.
And if you teach error, it will lead the people astray.
और जब आप गलत शिक्षा देंगे तो यह लोगों को दूर ले जाएगा.
There are many different interpretations of the Bible.
बाइबल के तमाम सारे अनुवाद हैं.
Your responsibility is to determine the Bible's meaning.
और आपको जिम्मेदारी है बाइबल के अर्थ का निष्कर्ष करने की.
Now there are many false teachers in India.
भारत में बहुत सारे झूठे शिक्षक.
And there's much false teaching doctrine in India.
और विशेषकर भारत में जो गलत शिक्षाएं हैं उसमें सिद्धांतों पर गलत शिक्षा है.
And some men don't handle the scripture properly.
कुछ मनुष्य बाइबल को ठीक ठीक उपयोग नहीं करते हैं.
Look in 2 Peter.
दूसरा पत्रस में देखिए.
You're familiar with this verse.
आप इस वचन से प्रचलित होंगे.
Chapter 3.
तीन अध्याय.
Notice verse 15.
15 पद ध्यान दीजिए.
The patience of the Lord is just as our beloved brother Paul, according to wisdom, wrote to you.
हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा.
Verse 16.
16 पद.
In all of his letters speaking in those things, some are hard to understand.
वह अपनी सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसे कहता है जिनमें से कुछ बातों को समझना कठिन
है. And the untaught and unstable twist it.
अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अर्थों को तोड़ मरोड़ करते हैं.
And they do this to the rest of scripture to their own destruction.
जैसा कि वे शास्त्र के शेष बातों को भी करते हैं अपने ही सर्वनाश के लिए.
What is Peter saying?
पत्रस क्या कह रहा है?
Paul has written his letters.
पौलुस ने उसके पत्र लिखे.
And some things in it are difficult to understand.
और उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो समझना कठिन है.
And if people are untaught or they're false teachers, they will twist the scriptures.
यदि लोग अशिक्षित हैं तो और झूठे शिक्षक उसको तोड़ मरोड़ देंगे.
They said they take Paul's letters and they give it the wrong meaning.
और वे कहते हैं पौलुस ये पत्रस ये कह रहा है कि वो लोग पौलुस के पत्रों को लेकर उनका अनर्थ निकाल देंगे.
And this is one of the plans of the devil.
और ये एक शैतान का योजना है.
In Genesis chapter 3.
उत्पत्ति उसका 3 अध्याय.
In the very beginning.
आरंभ में ही.
What did he do?
उसने क्या किया?
He slightly twisted the word of God.
उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ दिया.
And all through history that is the devil's plan.
और संपूर्ण इतिहास में यह शैतान की योजना है.
And Paul said that, Peter said some people twist the scriptures.
और पत्रस ये कहता है कि कुछ लोग वचन के साथ तोड़ मरोड़ करते हैं.
They have wrong motives.
उनका गलत उद्देश्य है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए.
Some men have right motives.
कुछ लोगों के पास सही उद्देश्य है.
But they're still ignorant.
लेकिन वह फिर भी अनजान है.
And they don't know how to properly interpret the scriptures.
उनको नहीं मालूम सही तरीके से वचन का अनुवाद कैसे किया जाए, व्याख्या कैसे की जाए.
Wrong thing.
वे गलत चीजें सिखाते हैं.
Your responsibility
आपकी जिम्मेदारी
is to properly interpret the scripture.
वचन का सही से अनुवाद करना और उसकी व्याख्या करना.
This is very important.
ये बहुत आवश्यक है.
If you go to the doctor,
यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाए,
and he gives you the wrong medicine,
और वो आपको गलत दवाई दे दे,
it could kill you.
वो आप मर सकते हैं उससे.
People come to the church,
लोग चर्च में आते हैं,
and you give them the wrong medicine,
आप उनको गलत दवाई दे रहे हैं,
or you teach them error,
आप उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं,
you don't properly interpret the word of God,
आप परमेश्वर के वचन का सही व्याख्या नहीं कर
रहे हैं, then you will lead people astray.
तो आप लोगों को अलग ले जा रहे हैं.
If you're going to properly teach the word of God, you must properly interpret the word of God.
यदि आप वचन की सही शिक्षा देना जा रहे हैं तो आपको उसका सही व्याख्या करना आवश्यक है.
And what is our purpose in interpreting the Bible?
बाइबल की का अनुवाद या व्याख्या करने में हमारा उद्देश्य क्या है?
Not to give it our own meaning.
हमारा स्वयं का अर्थ देना नहीं.
Not to give it our own tradition.
हमारे परंपरा देना नहीं.
What is the purpose of Bible interpretation?
बाइबल के व्याख्या का उद्देश्य क्या है?
To determine the meaning of the author.
लेखक का अर्थ प्रदान करना.
And who is the author?
और लेखक कौन है?
God.
परमेश्वर.
But how did he give us the scripture?
उसने हमें उसका वचन कैसे दिया?
Through different men.
अलग अलग मनुष्यों के द्वारा.
In different time.
अलग अलग समय में.
In different way.
अलग अलग तरीके से.
And our purpose is to know what the author meant.
और हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये जाने कि लेखक का अर्थ क्या है.
For example,
उदाहरण के लिए,
1 Timothy 2.
पहला तिमोथी 2 अध्याय.
Paul says, I don't permit a woman to teach or have authority over a man.
और मैं स्त्रियों को यह अनुमति नहीं देता कि वह शिक्षा दें और मनुष्यों पर अधिकार जताएं.
What did he mean?
उसका अर्थ क्या है?
In 1 Corinthians 14,
1 Corinthians 14 अध्याय,
he says, let women keep silent in the church.
स्त्रियां चर्च में शांत रहें.
In 1 Corinthians 12,
1 Corinthians 12 अध्याय,
he says, if any woman stands to prophesy in the church,
यदि कोई स्त्री खड़ी होती है चर्च में भविष्यवाणी करने के लिए,
what does he mean?
उसका क्या अर्थ है?
In chapter 12, he says a woman can prophesy.
12 अध्याय में कहता है स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है.
In chapter 14, he says let a woman keep silent in the church.
और 14 में वो कहता है कि स्त्री को चर्च में शांत रहना है.
Did Paul contradict himself?
क्या पौलुस अपने आप की बात का विरोध कर रहा है?
Our responsibility,
हमारी जिम्मेदारी,
is to study hard,
कठिन परिश्रम करके अध्ययन करें,
and determine what Paul meant,
और यह निर्णय करें कि पौलुस का अर्थ क्या है.
So this is very serious.
यह बहुत गंभीर बात है.
When you pick up this book,
जब आप यह पुस्तक लेते
or
हैं,
when you're in your study,
और उसका अध्ययन करते हैं,
and you open this book,
आप इस पुस्तक को खोलते हैं,
you ought to be like this.
आपको इस प्रकार से होना है. प्राप्त हुए.
Why?
क्यों?
Because you have a great responsibility.
क्योंकि आपके पास एक महान जिम्मेदारी है.
And you want to properly interpret this book.
कि आप इसका सही से व्याख्या करें.
This is very serious business.
यह बहुत गंभीर कार्य है.
And if you're just loose and casual,
यदि आप लापरवाह होंगे,
you will not be a useful teacher.
आप उपयोगी शिक्षक नहीं बन पाएंगे.
So this is very important.
इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है.
What is the source of all wrong teaching in the world?
संसार में सारी गलत शिक्षाओं का स्रोत क्या है?
Certainly it's the devil.
और निश्चय ही शैतान.
But how does he do it?
लेकिन वो कैसे करता है इसे?
Through men.
मनुष्यों के द्वारा.
Who do not properly interpret the word of God.
जो परमेश्वर के वचन को सही से व्याख्या नहीं कर पाते.
Now many men have many different interpretations of the Bible.
अलग अलग लोगों के पास अलग अलग भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं बाइबल की.
Some men believe you can baptize babies.
कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि आप बच्चों को बपतिस्मा दे सकते हैं.
Some people believe you should only baptize believers.
कुछ लोग विश्वास करते हैं आप केवल विश्वासियों को बपतिस्मा देंगे.
Some people believe in premillennialism.
Yes.
Premillennial, amillennial, postmillennial.
आज कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि वो हजार वर्ष के पहले का राज्य और हजार वर्ष का राज्य और उसके बाद का राज्य.
Now listen carefully.
ध्यान दीजिए.
Those things are important.
वे सब महत्वपूर्ण हैं.
But they're not the most important.
लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं.
You have to be clear on the most important thing.
आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है.
There are many men in church history.
कलीसिया इतिहास में बहुत सारे लोग रहे.
They're much smarter than all of us.
वो हम में से हर एक जन से अधिक बुद्धिमान
थे. And they've had different interpretations.
और उनकी अलग-अलग व्याख्याएं थीं.
But on the most important things.
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में.
You must be very clear.
आपको बहुत स्पष्ट होना है.
So I want to talk to you about the characteristics of a good Bible interpreter.
मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं एक अच्छे बाइबल की व्याख्या करने वाले की विशेषताएं.
And then we want to talk about basic principles of interpretation.
और तब हम बाइबल के आधारभूत जो सिद्धांत है उन पर बात करेंगे.
Now you may teach ladies.
आप स्त्रियों को सिखा
you
सकते
may
हैं.
Teach children.
आप बच्चों को सिखा सकते
you
हैं.
May go out and preach the gospel.
आप बाहर जाके प्रचार
you
कर
may
सकते
preach
हैं.
Every week in the church.
हर सप्ताह आप चर्च में खड़े होकर प्रचार कर सकते
But
हैं.
If you're going to preach a biblical message,
यदि आप बाइबल आधारित संदेश
you
का प्रचार
must
करने जा रहे हैं,
have these characteristics.
आपके पास ये सिद्धांत होना जरूरी है.
Number one,
पहली बात,
you must be born again.
आपका नया जन्म होना आवश्यक है.
You must have the spirit of God.
आपके पास परमेश्वर की आत्मा होना आवश्यक है.
Look in 1 Corinthians.
पहला ग्रंथियों में देखिए.
And chapter 2.
दो अध्याय.
This is very clear, very obvious.
ये बहुत स्पष्ट और खुला हुआ है.
This is a word from God.
ये परमेश्वर की ओर से वचन है.
It is a spiritual book.
ये आत्मिक पुस्तक है.
It contains spiritual things.
इसमें आत्मिक सत्य हैं.
It was given by the Holy Spirit.
यह पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई.
If you don't have the Holy Spirit,
यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है,
if you're not a true Christian,
यदि आप अच्छे मसीही नहीं हैं,
you cannot truly understand it.
आप इसको सत्य में नहीं समझने पाएंगे.
Chapter 2.
दो अध्याय.
Verse 14.
14 पद.
Natural man does not accept the things of God.
शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को मन ग्रहण नहीं करता.
They are foolishness to him.
ये उसके लिए मूर्खता है.
He cannot understand them.
वह उन्हें समझ नहीं सकता.
Why?
क्यों?
Because they're to be spiritually understood.
क्योंकि उनकी बातें उनकी परख आत्मिक रीति से होती है.
Verse 15.
15 पद.
But the man that is spiritual understands all things.
आत्मिक जन सब कुछ परखता है.
What does Paul say?
Paulus क्या कह रहा है?
A lost man,
एक खोया हुआ व्यक्ति,
he cannot fully understand the things of God.
एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की चीजों को सही से नहीं समझ सकता.
Now 2 years ago,
दो वर्ष पहले,
I went to a big meeting in America.
मैं अमेरिका में एक बड़े मीटिंग में गया.
And many seminary Bible school professors were there.
और बहुत सारे बाइबल स्कूल के शिक्षक थे वहाँ पर.
Many Bible scholars.
बहुत बाइबल के ज्ञाता लोग.
They knew Hebrew and Greek.
वे इब्रानी और यूनानी जानते
हैं. They knew Bible history.
बाइबल इतिहास जानते हैं.
They knew about 10 languages.
उनको 10 भाषाएं आती हैं.
They studied the Bible all of their life.
उन्होंने अपने जीवन भर बाइबल का अध्ययन किया है.
But many of them were not true Christians.
लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सच्चे मसीह नहीं हैं.
They could understand some facts about the Bible.
वह बाइबल के कुछ सत्य समझ के विषय में कुछ सत्य समझ सकते हैं.
But they couldn't understand its real spiritual meaning.
लेकिन वह इसका वास्तविक आत्मिक अर्थ नहीं समझ सकते.
And they could not teach it to others.
और वह दूसरों को सिखा नहीं सकते.
So this is the first characteristic.
इसलिए यह पहला विशेषता है.
You must have the Spirit of God.
आपके पास परमेश्वर की आत्मा का होना आवश्यक है.
You must ask for the help of the Spirit of God.
आपको आत्मा की सहायता मांगना जरूरी है.
Number two.
दूसरी बात.
You must have humility.
आपके अंदर नम्रता होना जरूरी है.
You must be a teachable person.
आप एक सीखने वाले व्यक्ति जरूर हों.
You cannot be proud.
आपको घमंडी नहीं होना है.
Your own intelligence is not enough.
आपके खुद की बुद्धि पर्याप्त नहीं है.
You must depend on the Spirit of God.
आप परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहना जरूरी है.
Look in Psalm 119.
भजन 119 में देखिए.
Very familiar verses.
बहुत प्रचलित वचन.
We must have a humble, teachable heart.
हमारे पास एक नम्र और सीखने वाला हृदय होना जरूरी है.
We must depend on the Holy Spirit.
और यह आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें.
And in Psalm 119,
भजन 119,
verse 18,
18 पद.
What does he say?
क्या कहता है ये?
Open my eyes that I may behold wonderful things from your law.
मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं.
Verse 34.
34 पद.
Give me understanding that I may observe and keep your law with all my heart.
मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं और अपने संपूर्ण मन से उस पर चलूं.
Verse 73
पद.
Your hands made me and fashioned me.
तेरे हाथों ने मुझे सृजा और संवारा है.
Give me understanding that I may learn your commandments.
मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं.
125. I am your servant.
मैं तेरा दास तो हूँ.
Give me understanding that I may know your testimony.
मुझे समझ दे कि मैं तेरी चेतावनियों को जान लूँ.
If you're going to interpret the Bible properly,
यदि आप बाइबल का सही व्याख्या करने जा रहे हैं,
your own intelligence is not enough.
आपकी स्वयं की बुद्धि पर्याप्त नहीं
है. You must have the help of the Spirit of God.
आपके पास पवित्र आत्मा की सहायता होना जरूरी है.
You must have a humble attitude.
आपके पास नम्रता का दृष्टिकोण होना जरूरी है.
Have a teachable spirit.
आपके पास सीखने वाली आत्मा होना जरूरी है.
Many young preachers,
बहुत सारे जवान प्रचारक,
they're proud.
घमंड है उनके पास.
They've been to seminary.
वो बाइबल कॉलेज
गए हैं. They have a PhD.
उनके पास PhD है.
They think they know everything.
वो सोचते हैं सब कुछ जानते हैं.
And they study all these things.
वो इन सब चीजों को पढ़ते हैं.
But they don't really understand.
लेकिन वे वास्तव में समझते नहीं.
Because they're not humble.
क्योंकि वे नम्र नहीं
हैं. And they're not teachable.
वे सीखना नहीं चाहते.
But a Bible, good Bible. Interpreter.
लेकिन एक अच्छा बाइबल का अनुवादक.
He's a true Christian.
अच्छा मसीही है.
He has humility.
उसके अंदर नम्रता है.
He is willing to be taught.
वह सीखना चाहता है.
And he depends on the Holy Spirit.
और वह पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता है.
Those characteristics you must have.
ये विशेषताएं आप में होना जरूरी है.
Number 4 or 5.
चौथा और पांचवा.
He's confident the Bible can be understood.
वह उसको इस बात का भरोसा है कि बाइबल समझी जा सकती है.
He believes that though there are many things that are difficult to understand, he believes the Bible can be understood.
यद्यपि बहुत सारी चीजें कठिन है फिर भी वो विश्वास करता है कि बाइबल को समझा जा सकता है.
And he is committed to the Bible as the word of God.
और वह बाइबल को समर्पित है परमेश्वर के वचन के रूप में.
He thinks this book is different from all other books.
वह ये सोचता है कि यह पुस्तक दूसरी अन्य पुस्तकों से कठिन है.
And he depends upon the Spirit of God.
और वह परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहता है.
And he has a humble spirit.
और उसके पास एक नम्र आत्मा होता है.
And every time you study the word of God,
जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं,
you need to pray.
आपको प्रार्थना करना है.
God, I'm just a baby.
परमेश्वर मैं केवल एक बालक हूँ.
Open my eyes.
मेरी आंखों को खोल दीजिए.
Open my heart.
मेरे हृदय को खोल दीजिए.
Open my mind.
मेरे मस्तिष्क को खोल दीजिए.
Give me understanding.
मुझे समझ प्रदान कीजिए.
And if you don't have a humble heart,
यदि आपके पास नम्र हृदय नहीं है.
And if you don't have a teachable heart,
यदि आप सीखने वाला मन नहीं है.
And if you're not born again,
यदि आपने नया जन्म नहीं
पाया. And you don't believe this is the word of God,
और आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है.
And you don't believe this Bible can be understood,
और आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि बाइबल को समझा जा सकता
है. You can't properly interpret it.
आप सही अनुवाद नहीं कर सकते बाइबल.
There are lots of false teachers.
वहाँ पर बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं.
There are a lot of people that are ignorant.
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनजान हैं.
They are sincere.
वे गंभीर हैं.
But they are ignorant.
लेकिन अनजान हैं.
They are sincere.
गंभीर हैं वे.
But they don't know how to interpret the Bible.
लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बाइबल की व्याख्या कैसे करें.
They are sincere.
गंभीर हैं वे.
But they don't depend on God.
लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा निर्भर नहीं रहते.
You must have these characteristics.
आपके अंदर ये विशेषताएं होना जरूरी है.
But let me mention a few general principles here of interpretation.
आइए हम यहाँ पर कुछ सामान्य बातों की व्याख्या करें. व्याख्या के संबंध में सामान्य बातों को देखें.
Now this is very basic.
ये बहुत आधारभूत है.
If we come back again, we'll look at these things in more detail.
और यदि हम फिर से वापस आएंगे तो हम इन पर विस्तार से बात करेंगे.
But if you're going to properly interpret the Bible,
यदि आप बाइबल को सही से व्याख्या करना चाहते हैं,
listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
Number one,
पहली बात,
you need to understand what kind of literature you are in.
आपको ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार का साहित्य में हैं आप.
The Bible is written over a long time.
बाइबल लंबे समय में लिखी गई.
By many different authors.
अलग अलग लेखकों के द्वारा.
And many different ways.
और बहुत अलग अलग तरीकों से.
And many different kinds of literature.
और अलग अलग प्रकार के साहित्य में.
What do we mean?
उसका अर्थ क्या है?
There is history.
इतिहास की पुस्तकें हैं इसमें.
There is poetry.
उसमें काव्य है. काव्य है. Yes.
There
हाँ, काव्य और कविताएं में कुछ अंतर नहीं है.
Parables.
और इसमें दृष्टांत हैं.
There are epistles or letters.
और उसमें पत्र हैं.
There is prophecy.
और भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं इसमें.
If you're going to interpret the Bible properly,
यदि आप बाइबल की सही व्याख्या करने जा रहे हैं,
first thing you need to understand,
पहली बात जो आपको समझना जरूरी है,
what kind of literature is this?
किस प्रकार का साहित्य है ये?
Is this history?
क्या ये इतिहास है?
Or is this prophecy?
या ये नबूवत है?
Is this poetry?
क्या ये काव्य है?
Or is this an epistle?
या ये एक पत्र है?
Is this a parable?
क्या ये दृष्टांत है?
What is it?
क्या है ये?
You must have sensitivity to the different kinds of scripture.
भिन्न प्रकार के जो खंड हैं उनके लिए आपके पास समझ होना जरूरी है.
So I'm going to say a book, and you tell me what kind of literature it is.
मैं एक पुस्तक का नाम लेने जा रहा हूँ और आप बताइए कि वो किस प्रकार का साहित्य है.
Genesis.
उत्पत्ति की पुस्तक.
Psalms.
भजन.
Poetry. Revelation.
प्रकाशित वाक्य.
Matthew.
मत्ती.
Matthew 13.
मत्ती 13 अध्याय. Parables. Parables.
Parables. Matthew 24 and 25.
Matthew 24 and 25.
Song of Solomon.
Shrestha Geet. Poetry.
Ephesians.
Ephesians. Pustak. Epistle.
Proverbs.
Proverbs. Niti Bachan.
They call it poetry, but they also call it wisdom literature.
हाँ, नीति वचन की पुस्तक को कुछ लोग काबे की पुस्तक कहते हैं, लेकिन उसे ज्ञान की पुस्तक भी कहा जाता है.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
You may have different kinds of literature inside another kind of literature.
ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रकार के साहित्य में दूसरे प्रकार के साहित्य हो.
History may contain prophecy.
इतिहास में भविष्यवाणी भी हो सकती है.
History may contain poetry.
और इतिहास में काव्य भी हो सकता है.
And there's a proper way to interpret history.
और इतिहास को व्याख्या करने के लिए एक तरीका है.
And there's a proper way to interpret poetry.
और काव्य को व्याख्या करने के लिए अलग तरीका है.
Especially Hebrew poetry.
और विशेषकर इब्रानी काव्य.
Now we don't have time to look at this in detail.
हमारे पास समय नहीं है कि हम उस पर विस्तार से बात करें.
I'm trying to make you sensitive to be able to determine what kind of literature you're in.
मैं आपको संवेदनशील बनाना चाहता हूं कि आप ये निर्णय कर सकें कि किस प्रकार के साहित्य में हैं आप.
Matthew chapter 5, 6 and 7.
मत्ती 5 अध्याय 6 और 7 पद.
What is it?
क्या है वो?
Is it history?
क्या वो इतिहास है?
Is it prophecy?
भविष्यवाणी.
What is it?
क्या है वो?
John chapter 13 to 16.
योहन्ना 13 अध्याय से 16 पद.
What is it?
क्या है वो?
Who's teaching?
किसकी शिक्षा है?
He's teaching in history.
वो इतिहास में सिखा रहे हैं.
There are types of literature within literature.
और यहां पर ऐसा है कि एक प्रकार के साहित्य में दूसरे प्रकार का साहित्य है.
I know you already understand that.
और मैं जानता हूं कि आप इन बातों को पहले ही समझते हैं.
But if you're going to interpret the Bible properly,
यदि आप बाइबल की सही व्याख्या करने जा रहे हैं,
first question you have to ask.
आपको ये प्रश्न पूछना जरूरी है.
Where am I?
मैं कहां हूं?
Ezekiel chapter 40 through 48.
यह स्केल 40 अध्याय से 48 अध्याय तक.
Prophecy.
भविष्यवाणी.
Isaiah chapter 20 through 39.
यशायाह 20 अध्याय से 39 अध्याय तक.
Prophecy about what?
किसके विषय में भविष्यवाणी?
About the nations.
राष्ट्र के विषय में.
You have to know what kind of literature you're in.
आपको ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार के साहित्य में हैं आप.
Revelation chapter 2 and 3.
प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय.
Revelation 4 and 5.
प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय. बताइए.
Where are you in Revelation 4 and 5? Where are you?
In the vision, heavenly vision.
You're in heaven.
Yes.
You have to know where you are.
आपको जानना जरूरी है कि आप कहां हैं.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं.
You don't interpret parables the same way you interpret history.
आप उस प्रकार से दृष्टांतों की व्याख्या नहीं कर सकते जैसे आप इतिहास की करते हैं.
You don't interpret Matthew 24 and 25 the same way you interpret Matthew 5, 6 and 7.
मत्ती 5, 6, 7 की तरह आप 24 और 25 की व्याख्या नहीं कर सकते.
You need to know where you are.
आपको जानना जरूरी है कि आप कहां हैं.
Do you understand what we're saying?
क्या आप समझ रहे हैं जो हमने कहा?
That's the first point.
ये पहला बिंदु है.
Number two.
दूसरा.
You must be familiar with the history and the culture of that passage.
आपको इतिहास को और उस खंड की संस्कृति को समझना जरूरी है.
The historical background,
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,
and the cultural situation,
और सांस्कृतिक स्थिति.
So if you're in 1 Corinthians,
यदि आप पहला कुरिन्थियों में हैं,
and Paul is talking about meat that's offered to idols,
और पौलुस वहाँ मूर्ति पर चढ़ाए गए खाने के विषय में बात करता है,
what's he talking about?
क्या बात कर रहा है वो?
And if you don't understand the situation at Corinth,
यदि आप कुरिन्थियों की परिस्थिति के नहीं समझ रहे हैं,
and if you don't understand the cultural background,
और यदि आप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं समझ रहे हैं,
you cannot properly interpret the passage.
आप सही से खंड की व्याख्या नहीं कर पाएंगे.
If you're preaching through the book of 1 Corinthians,
यदि आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक प्रचार कर रहे हैं,
you need to know something about the background.
आपको पृष्ठभूमि के विषय में कुछ जानना जरूरी
है. You need to know something about the culture.
अब जो आपको कुछ संस्कृति के बारे में सिखाएगा.
Because Paul is writing to a particular church in a specific culture.
पौलुस एक विशेष कलीसिया को लिख रहा है एक विशेष संस्कृति में.
And you have to understand that culture.
आपको संस्कृति को समझना जरूरी है.
So if Paul says any woman that prays or prophesies with her head uncovered, what does he mean?
जब पौलुस ये कहता है कि स्त्री अपना सिर ढक के और भविष्यवाणी करे तो उसका क्या अर्थ है?
Is that for now or was that for the first century?
क्या वो अब के लिए है या पहली शताब्दी के लिए था?
Paul says, greet one another with a holy kiss.
पौलुस कहता है एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो.
Is that cultural or is that timeless?
क्या वह सांस्कृतिक था या हर समय के लिए था?
Paul says, Jesus washed feet.
यीशु ने पैर धोए लोगों के.
And he said, I gave you an example.
उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है.
Do you wash feet in this church?
क्या आप इस कलीसिया में पैर धोते हैं लोगों के?
Why not?
क्यों नहीं?
Jesus said, I gave you an example.
यीशु ने कहा मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है.
You must understand the culture.
आपको संस्कृति समझना जरूरी है.
You must understand the background.
आपको पृष्ठभूमि समझना जरूरी है.
And if you don't understand some of the history,
यदि आप कुछ इतिहास को नहीं समझेंगे,
you may not properly interpret the verse.
फिर आप वचन की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे.
And after you think about the historical and cultural background, after you do that,
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विषय में सोचने के बाद,
you have to narrow your focus closer to the text.
तब आपको अपने ध्यान को खंड पर लगाने की जरूरत है.
And number three,
तीसरा बिंदु,
you have to study closely the larger and immediate context of the verse.
आपको खंड के विस्तार से और तुरंत जो बात कह रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है.
The problem with many preachers,
बहुत सारे प्रचारकों के साथ समस्या क्या है?
They go to the Bible. They go to the Bible.
बाइबल में जाएंगे वो.
They don't pay any attention to the context.
वह संदर्भ पर एकदम ध्यान नहीं देंगे.
They don't know what literature they're in.
वो ध्यान नहीं देंगे कि किस प्रकार के साहित्य है.
And they just go pick out a verse.
और वो एक वचन ले लेंगे वहां से.
Jesus said, "I stand at the door and knock."
और यीशु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा
हूं. They take that verse right out of its context.
और वह उसको संदर्भ के बाहर ले लेंगे.
And they develop a method of preaching,
और वह एक प्रचार का तरीका ले लेंगे वहां से.
That has led thousands of people into a false decision.
और जिसके द्वारा हजारों लोग गलत निर्णय की ओर ले जाए गए हैं.
Why?
क्यों?
Because they didn't pay attention to the context.
क्योंकि उन्होंने संदर्भ पर ध्यान नहीं दिया.
Every verse has a context.
हर एक पद का एक संदर्भ है.
And if you take it right out of its context,
यदि आप उसको संदर्भ के बाहर ले लेते हैं,
and you preach it like it is,
और आप उसको जैसे वो है वैसे प्रचार करेंगे,
you'll make it say something it didn't mean.
और तब आप उसको इसके अर्थ का अनर्थ कर देंगे.
That's why you have to read the passage again and again.
इसलिए आपको उस खंड की बार बार पढ़ने की जरूरत.
The problem with most preachers,
बहुत सारे प्रचारकों के साथ समस्या क्या
है? They don't want to do that.
वो ये करना नहीं चाहते.
They read one verse.
वे एक पद पढ़ते हैं.
They say, oh, it means this.
और वो कहते हैं इसका अर्थ ये.
One, two, three.
तो एक दो तीन बार.
They stand up to preach.
तब वो खड़े होंगे प्रचार करने.
And they totally misinterpreted the verse.
और तब वो पूरी तरह से उस पद का गलत उपयोग करते हैं.
A good student,
एक अच्छा छात्र,
understands the context.
संदर्भ को समझता है.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
So if I give you a verse,
यदि मैं आपको पद दूं,
You must know the context.
आपको संदर्भ जानना जरूरी है.
And if you don't know the context,
यदि आप संदर्भ नहीं जानेंगे,
you'll twist the scriptures.
आप वचन को तोड़ मरोड़ देंगे.
You must be familiar with the context.
आपको संदर्भ को समझना जरूरी है.
If you came into the room,
यदि आप कमरे में आए,
and you walked in the door,
और आप दरवाजे को खोलते हैं,
and you heard me say this,
और आप मुझे कहते सुनते हैं,
no, no, no,
नहीं, नहीं, नहीं,
and then you went out,
और जब आप बाहर जाते हैं,
and you would tell someone else,
और आप किसी से कहते हैं,
brother Andy's very mad,
भाई, Andy पागल हो गए हैं.
And he just told somebody, no, no, no.
उन्होंने किसी को नहीं 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 कहा.
But if you've been sitting here the whole time,
यदि आप पूरे समय यहाँ बैठे हैं,
and you've been listening to the whole presentation,
और आप पूरा संदेश सुन रहे हैं,
I wasn't saying no, no, no to someone.
मैं किसी को नहीं 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 कह रहा था.
I had another meaning.
मेरा उसका कुछ और अर्थ है.
And so you must pay attention to the context.
इसलिए आपको संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक है.
Many preachers are wrong on this point.
बहुत सारे प्रचारक इस बिंदु पर गलत हैं.
Number four.
चौथी बात.
Be familiar with the grammar and the structure of the sentences. The grammar. You know grammar?
Yes. खंड का व्याकरण और
And the structure of the sentence.
ढांचा समझना जरूरी है.
The Bible is written in sentences.
बाइबल वाक्यों में लिखी गई है. इसलिए वाक्यों का व्याकरण और ढांचा समझना आवश्यक है.
And it is written with a certain grammar.
और उसके साथ कुछ ना कुछ व्याकरण डाले गए हैं.
And if you don't pay attention to the grammar,
यदि आप व्याकरण पर ध्यान नहीं देंगे,
and if you don't pay attention to the subject,
और आप विषय पर ध्यान नहीं देंगे,
to the sentence,
वाक्य पर,
to its structure,
ढांचे पर,
you'll do a wrong interpretation.
आप गलत अनुवाद करेंगे.
For example,
उदाहरण के लिए,
you people that speak English,
जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं,
tell me what the difference is in these two sentences.
आप जान पाएंगे इन दो वाक्यों में क्या अंतर है. ये दो वाक्य जो हैं यहाँ पर उनका अंतर समझ पाएंगे.
Those sentences say the same thing?
क्या वो एक ही बात कह रहे हैं दोनों?
What's the difference? This is one word?
ये एक वाक्य शब्द है.
This is two words.
यहाँ पर दो शब्द हैं.
And if you don't pay attention to grammar,
यदि आप व्याकरण पर ध्यान नहीं देंगे,
and if you don't study words,
यदि आप शब्दों का अध्ययन नहीं करेंगे,
your whole theology will be wrong.
आपका सारे सिद्धांत गड़बड़ हो जाएंगे.
Now, I don't know what the Hindi says.
मुझे नहीं मालूम हिंदी क्या कहती है. Yes, it's different.
Yeah. But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए.
Especially if you can read English.
विशेषकर अंग्रेजी में.
And especially if you can study Greek.
जो यूनानी पढ़ते हैं.
You need to pay attention to grammar.
आपको व्याकरण पर ध्यान देना जरूरी है.
This is Revelation 3:20.
यह प्रकाशित वाक्य 3:20 है.
Most people interpret it like this.
बहुत लोग इसको इस प्रकार से व्याख्या करते हैं.
I will come inside of him.
मैं उसके अंदर आऊंगा.
But that's not how it reads.
लेकिन वो ऐसे नहीं लिखा है वहां पर.
I will come into the church.
मैं चर्च में आऊंगा.
Up to him.
उसके पास तक.
Face to face.
आमने सामने.
That's the meaning.
उसका ये अर्थ है.
And if you don't understand that,
यदि आप ये नहीं समझेंगे,
you'll say this.
आप ये कहेंगे.
Jesus knocking at the door of your heart.
यीशु आपके हृदय की दोर पर खटखटा रहा है.
If you'll open the door,
यदि आप दरवाजा खोलेंगे,
he will come into you.
वो आपके अंदर आएगा.
And if you don't pay attention to the type of literature,
यदि आप साहित्य के प्रकार पर ध्यान नहीं देंगे,
if you don't pay attention to the context,
यदि आप संदर्भ पर ध्यान नहीं देंगे,
if you don't pay attention to basic grammar,
यदि आप आधारभूत व्याकरण को ध्यान नहीं देंगे,
if you don't pay attention to the structure of sentences,
यदि आप वाक्यों के ढांचे पर ध्यान नहीं देंगे,
you will have a wrong interpretation.
आप गलत व्याख्या करेंगे.
And one small mistake,
और एक छोटी सी गलती,
in the Western Christianity,
पाश्चात्य मसीहियत में,
has led thousands and thousands of people to a false decision.
एक छोटी सी गलती के कारण पाश्चात्य मसीहियत में हजारों हजार लोग गलत निर्णय की ओर चले गए.
So grammar is important.
व्याकरण महत्वपूर्ण है.
Context is important.
संदर्भ महत्वपूर्ण है.
Background is important.
पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है.
Sentence structure is important.
वाक्यों का ढांचा महत्वपूर्ण है.
Now the problem with many preachers,
बहुत सारे प्रचारकों के साथ समस्या क्या है?
China and in India,
चीन और भारत में,
they haven't been trained how to look at sentences.
उनका इस प्रकार से प्रशिक्षण नहीं हुआ है कि वाक्यों को कैसे देखें.
But you can learn to do that more and more.
लेकिन आप इस बात को अधिक से अधिक सीख सकते हैं.
But you have to be willing to work hard.
लेकिन आपको उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा.
I'm just giving you some general principles of Bible interpretation.
मैं आपको कुछ सामान्य तरीके बता रहा हूँ बाइबल व्याख्या के.
Know the kind of literature.
जान लीजिए साहित्य किस प्रकार का है.
Know the history and culture.
इतिहास और संस्कृति को जान लीजिए.
That doesn't mean you have to be an expert.
इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो.
You can read half a page or one page of some basic Bible dictionary book.
आप बाइबल के जो शब्दकोश है उसका आधा पेज या एक पेज पढ़ सकते हैं.
And that will give you information.
वह आपको सूचनाएं प्रदान करेगा.
Number five.
पांचवा बिंदु.
Listen carefully.
ध्यान दीजिए.
You must study individual words.
आपको एक एक शब्द का अध्ययन करना भी जरूरी है.
And words are determined, the definition of a word is determined by how it's used.
और शब्द की परिभाषा इस बात पर निर्भर है कि वह कैसे उपयोग किया गया है.
For example, if I say this,
उदाहरण के लिए यदि मैं ये कहूँ,
in the Bible, what does the word world mean? World, the world.
बाइबल में संसार का क्या अर्थ है? संसार शब्द का क्या अर्थ है? जगत शब्द का क्या अर्थ है?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
In different context, it has different meaning.
अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ हैं.
It doesn't mean the same thing in every context.
हर संदर्भ में उसका एक ही अर्थ नहीं है.
And you must be sensitive to the definition of words.
इसलिए आपको शब्दों की परिभाषा में संवेदनशील होना है.
Many preachers say this.
बहुत प्रचारक ये कहेंगे.
Well, world means world.
संसार का मतलब संसार है.
That's everybody.
ये सब जानते हैं.
That's what the world is.
संसार का मतलब यही है.
But if you study the word in its context,
यदि आप शब्दों का ध्यान देंगे इसके संदर्भ में,
what the word means.
उसका तब आप पाएंगे कि इसका अर्थ संसार ही नहीं है.
Another word,
दूसरा शब्द,
law,
प्रेम.
When you say the word law,
सॉरी, व्यवस्था, जब आप व्यवस्था का शब्द का उपयोग करते हैं,
law,
yeah.
What does it mean?
इसका अर्थ क्या है?
In different context, it has different meaning.
अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ हैं.
And if you don't understand that, you will misinterpret the word.
और यदि आप उसके अर्थ अलग अलग संदर्भ को नहीं समझते हैं तो आप उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे.
Maybe the next time we come, we can look at some examples of this.
जब हो सकता अगली बार हम आए तो इसके कुछ उदाहरण देख सकें.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए.
This is when most preachers get tired and want to quit.
और बहुत सारे प्रचारक इन्हीं चीजों में थक जाते हैं और छोड़ देना चाहते हैं.
They say this.
वे ये कहेंगे.
If I thought studying the Bible was this hard, I'd never been a preacher.
यदि मुझे ये पता चलता कि बाइबल का इतना कठिन अध्ययन करना पड़ेगा तो मैं कभी प्रचारक नहीं बनता.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए.
If you're called of God,
यदि आप परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं,
you're willing to pay the price.
तो आप कीमत चुकाने को तैयार होंगे.
You're willing to work hard.
आप कठिन परिश्रम करने को तैयार होंगे.
Now let me ask you a question.
मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने दीजिए.
What if I heard you saying something to her?
यदि मैं सुनूं कि आप उससे कुछ कह रहे हैं.
And you meant one thing when you said to her.
जब आपने उससे कुछ कहा तो उसका एक अर्थ है.
But I heard you say it.
और मैंने तो आपको कहते सुना
and I went over here,
और मैं उनके पास जाता हूँ
and I told this girl,
और मैं उस लड़की से ये कहता
हूँ do you know what she said?
आप तुमको मालूम है वो उनसे क्या कह रही थी
and you take the words out of her mouth,
आपने उसके मुंह से शब्दों को लिया
and you change them,
और आपने उनको बदला
and you put it in someone else's ear,
और दूसरे कान में वो शब्द डाल दिए
would that be right?
क्या वो सही होगा
You're misrepresenting the meaning of the speaker.
आपने बोलने वाले के शब्द का अर्थ खो दिया.
And if you do not properly interpret the word of God,
यदि आप परमेश्वर के वचन का सही व्याख्या नहीं करते हैं,
you are misrepresenting the meaning of the speaker.
आप बोलने वाले के शब्द के अर्थ को खो दे रहे हैं. या उसका गलत प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
If you want to be a useful preacher,
यदि आप उपयोगी प्रचारक होना चाहते
you've
हैं,
got to work hard,
आपको कठिन परिश्रम करना होगा
If you want to be a useful preacher,
यदि आपको उपयोगी प्रचारक होना है
you've got to be familiar with different types of literature,
आपको अलग अलग साहित्य को जानना जरूरी
you've
है
got to understand historical background,
जो ऐतिहासिक परिस्थिति को समझते हैं
You've got to understand Old Testament, New Testament culture,
जो पुराने नियम के और नए नियम की संस्कृति को समझता
है You've got to understand the context of the verses,
और जो पदों के संदर्भ को समझता है
You need to pay attention to its grammar,
आप उसके व्याकरण पर ध्यान देंगे
You need to look at its sentence structure,
आप वाक्य के ढांचे पर ध्यान देंगे
You may need to pay attention to words,
और आप पद पर ध्यान देंगे
Most guys say this.
वह शब्दों पर ध्यान देंगे बहुत सारे लोग इस तरह सर पीट लेंगे अपना
I can tell by some of you right now listening to me that you've lost interest in what we're saying.
मैं आप में से कई लोगों को देखकर कह सकता हूँ आपने रुचि खो दी है जो मैं कह रहा हूँ उस पे
And if you're lost interest in this, you're not going to be a good Bible preacher.
यदि आपने रुचि खो दी है इन सब चीजों में, तो आप अच्छे प्रचारक नहीं होंगे.
You say this.
आप ये कहेंगे.
I don't need all that.
मुझे इन सब की जरूरत नहीं.
I just open the Bible.
मैं केवल बाइबल खोल सकता
हूँ. And I just pray.
मैं प्रार्थना करूँगा.
And I just preach.
और मैं प्रचार करूँगा.
You take the words of Christ.
आप मसीह के वचन को लेते हैं.
Out of his mouth.
उसके मुंह से.
And twist it.
और उसको मरोड़ते हैं.
And put it in someone's ear.
और फिर दूसरे के कान में डालते हैं.
If you don't want to work hard,
यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे.
If you don't want to get a headache,
यदि आप सरदर्द को नहीं लेंगे.
Then you don't need to be a preacher.
तो आपको प्रचारक नहीं होना चाहिए.
Number six.
छठा बिंदु.
Allow the clear passages to explain the unclear ones.
स्पष्ट खंडों को अनुमति दें कि वह अस्पष्ट खंडों की व्याख्या करें
What do we mean?
हमारा अर्थ
we
क्या
let
है
scripture interpret.
Let me repeat.
Okay.
स्पष्ट खंडों को अनुमति दें कि वह अस्पष्ट खंडों की व्याख्या करें
Yes. Some passages are unclear.
कुछ खंड अस्पष्ट हैं
How do you interpret them?
आप उनकी व्याख्या कैसे करते हैं?
You let other scriptures interpret them.
आप दूसरे खंड को लेकर उसकी व्याख्या करने देते हैं.
For example,
उदाहरण के लिए.
Look at 1 John chapter 2.
पहला यूहन्ना उसके दो अध्याय में देखिए.
This is a principle of letting scripture interpret scripture.
यह सिद्धांत है. शब्द वचन के द्वारा वचन की व्याख्या का
1 John chapter 2
पहला यूहन्ना उसका दो अध्याय
verse 2
दो पद
read the verse
वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी
Now what does that verse mean
उसका अर्थ क्या है
How do you interpret that verse?
उसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप?
Let me show you another verse.
मैं आपको एक और पद दिखाऊंगा.
Look in the Gospel of John.
यूहन्ना के सुसमाचार में आइए.
John chapter 11.
11 अध्याय. Yes.
49 to 52.
49 yes.
to
52. 49 to
52. All right, read 1 John 2:2 and read John 11:49 to 52.
पहला योहन्ना उसका दो अध्याय दो वक्त पढ़िए, फिर योहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 49 to 52 पद तक पढ़िए।
And I'll give you 3 minutes.
मैं आपको 3 मिनट दूंगा।
And I want to ask you this question.
और तब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा।
Is there any relationship between those two passages?
और क्या इन दोनों खंडों में कोई संबंध है?
It's the same author.
और लेखक एक ही है।
Especially verse 52.
विशेष चर्चे 52 पद.
Is there any relationship between 1 John 2:2 and John 11:52?
क्या कोई संबंध है योहन्ना उसका 11 अध्याय 52 पद में और पहला योहन्ना उसका 2 अध्याय और 2 पद में? बताइए क्या संबंध है?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
Scripture will help you interpret Scripture.
वचन आपको वचन की व्याख्या करने में सहायता करेगा.
But there's a principle.
लेकिन वहाँ एक सिद्धांत है.
It's called the interpretation circle. Circle.
और ये व्याख्या का पहिया कहलाता है.
What do we mean?
उसका अर्थ क्या है?
Here is 1 John.
यहाँ पर पहला योहन्ना है.
What kind of literature is it in?
किस प्रकार का साहित्य है ये?
Epistle.
पत्र.
Who wrote it?
किसने लिखा?
What else did he write?
और क्या लिखा उसने?
Revelation.
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक.
What else?
और क्या?
The Gospel of John.
योहन्ना का सुसमाचार.
One writer.
एक लेखक.
Three kinds of literature.
तीन प्रकार के साहित्य.
Epistle.
पत्र.
Prophecy.
भविष्यवाणी.
History.
इतिहास.
How does Scripture interpret Scripture?
वचन कैसे वचन की व्याख्या करेगा?
You go in a increasing circle of interpretation.
आप बढ़ते हुए दायरे में जाइए व्याख्या के.
What do we mean?
उसका क्या मतलब है?
What's the first circle?
पहला जो दायरा है वो क्या है?
Same author.
वही लेखक.
You look at everything John wrote.
आपने योहन्ना के सभी साहित्यों को देखा.
What's another circle?
दूसरा साहित्य क्या?
Same kind of literature.
उसी प्रकार के साहित्य जो दूसरे हैं.
What's another circle?
दूसरा गोला क्या है?
All the New Testament.
सभी नए पूरा नया नियम.
What's another circle?
उसके संदर्भ में देखिए.
The whole Bible.
संपूर्ण Bible.
When you talk about the principle of Scripture interpreting Scripture.
जब आप वचन के द्वारा वचन की व्याख्या के सिद्धांत की बात करते हैं.
If you're trying to interpret Paul in Ephesians chapter 3,
यदि आप पौलुस की व्याख्या करना चाहते हैं इफिसियों 3 अध्याय में से,
where do you first look?
कहां पर आप देखेंगे पहले?
In the book of Ephesians.
इफिसियों की पुस्तक में ही.
Where do you look second?
और फिर आप कहां देखेंगे?
In all the writings of Paul.
पौलुस की दूसरी पत्रियों में.
You use scripture to interpret scripture.
आप वचन की व्याख्या करने के लिए वचन का उपयोग करते हैं.
And in 1 John 2:2,
पहला योहन्ना उसका 2 अध्याय 2 पद,
you have epistle literature.
ये जो एक पत्र है.
But you have John.
लेकिन यूहन्ना है वहां पर.
In the Gospel of John,
यूहन्ना के सुसमाचार में,
John 11 verse 52,
यूहन्ना 11:52,
you have a different kind of scripture,
वहां पर अलग प्रकार का साहित्य है,
but you have the same author.
लेकिन लेखक समान है.
Who is the best person to interpret John?
यूहन्ना की व्याख्या करने के लिए कौन सबसे सही व्यक्ति है?
John.
यूहन्ना ही.
He can interpret himself.
वह अपने आप की व्याख्या कर सकता है.
And if you're sensitive to other scripture, this principle of scripture interpreting scripture can help you.
यदि आप संवेदनशील हैं वचन के लिए, तो वचन के द्वारा वचन की व्याख्या करने का सिद्धांत आपकी सहायता कर सकता है.
Some scripture is not completely clear.
कुछ वचन पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं है.
Mark Chapter 16.
मार्कुस उसका 16 अध्याय.
Go into all the world and preach the gospel.
सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो.
He that believes and is baptized shall be saved.
जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा.
So people say this.
लोग ये कहेंगे.
If you want to be saved,
या तुम उद्धार पाना चाहते हो,
you've got to be baptized.
आपको बपतिस्मा लेना जरूरी
है. If you're not baptized,
यदि आप बपतिस्मा नहीं लेंगे,
you're not saved.
आप उद्धार नहीं पाएंगे.
How do you answer that?
आप इसका उत्तर कैसे देंगे?
You use other scripture.
आप दूसरे वचन का उपयोग करेंगे.
It talks about baptism.
ये बपतिस्मा के विषय में बात करता है.
That is more clear.
जो स्पष्ट है.
And you let the more clear passage help you on the unclear passage.
तब आप स्पष्ट वचनों का उपयोग करते हैं कठिन वचनों को समझाने के लिए.
Do you understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं?
Now listen carefully.
आप ध्यान से सुनिए.
If you're not reading the Bible continually,
यदि आप लगातार बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं,
when you read this verse,
यदि आप इस पद को पढ़ते हैं,
you won't think of any other verses.
और आप किसी दूसरे पद के बारे में नहीं सोचेंगे.
That's why every preacher needs to be reading the Bible every day.
इसलिए हर एक प्रचारक के लिए जरूरी है कि वह प्रतिदिन बाइबल पढ़े.
And he ought to be reading it according to a plan.
और उसको इस बाइबल को एक योजना के अनुसार पढ़ना है.
Do you have a Bible reading plan?
क्या आपके पास बाइबल पढ़ने की योजना है?
Where you're reading in the Old Testament and the New Testament.
आप जहाँ पर पुराने नियम और नए नियम दोनों को पढ़ रहे हैं.
A lot of Christians are like this.
बहुत सारे मसीही लोग इस प्रकार
हैं. They just get up in the morning.
वह सुबह उठते हैं.
They open their Bible.
बाइबल खोलते हैं.
They read a verse.
एक पद पढ़ते
हैं. They close it.
बंद करते हैं.
And they go on.
और चले जाते हैं.
But if you're going to be a preacher,
यदि आपको एक प्रचारक होना है,
you've got to live in this book.
आपको इसमें जीवन बिताना है.
So when you are reading Revelation chapter 22,
जब आप प्रकाश
You are immediately thinking about Isaiah 65 and 66.
और तब आप तुरंत इसाया 65-66 अध्याय के बारे में सोचेंगे.
Why?
क्यों?
Because you're familiar with the Bible.
क्योंकि आप बाइबल जानने वाले व्यक्ति हैं.
And you let Scripture interpret Scripture.
और आप वचन को वचन की व्याख्या करने देंगे.
You're reading John 3.
आप यूहन्ना 3 पढ़ रहे हैं.
Jesus says you must be born of water and the Spirit.
जहां यीशु कहते हैं कि तुझे पवित्र आत्मा और जल से जन्म लेना आवश्यक है.
So man gets up to preach.
एक मनुष्य खड़ा होता है प्रचार करने.
If you want to be saved,
यदि आपको उद्धार पाना है,
you got to be baptized.
आपको बपतिस्मा लेना जरूरी
है. So Jesus says you got to be born of water.
आपको यीशु ने कहा कि तुम्हें जल से जन्म लेना है.
But if you don't know your Bible,
यदि आप अपनी बाइबल नहीं जानते,
you'll be just like Nicodemus.
आप निकोदेमस के समान होंगे.
What did Jesus say?
यीशु ने क्या कहा?
Nicodemus.
Nicodemus.
You're a teacher of Israel.
तू इस्राएल का शिक्षक है.
And you don't understand these things.
तू इन बातों को नहीं समझता.
What is Jesus talking about?
यीशु क्या बात कर रहे हैं?
He's talking about Ezekiel 36.
वो यहेजकेल 36 अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं.
And you say it. Ezekiel 36.
आप कहेंगे Ezekiel 36.
And if you don't understand the relationship of John chapter 3 to Ezekiel 36, you're just like Nicodemus.
यदि आप यूहन्ना 3 अध्याय का संबंध नहीं समझ सकते हैं Ezekiel 36 अध्याय से, तो आप निकोदेमुस के समान हैं.
Jesus says this.
यीशु ने ये कहा.
You're a teacher in Israel.
तू इस्राएल का शिक्षक है.
You don't even know your own Bible.
तू अपनी बाइबल को भी नहीं जानता.
But if you're reading the whole Bible,
यदि आप संपूर्ण बाइबल पढ़ रहे हैं,
you see it's connected.
आप उसको संबंध
को देखते हैं. There's unity.
आप एकता को देखते हैं.
There's promise and there's fulfillment.
उसमें प्रतिज्ञाएं हैं और उनका पूरा होना है.
And if you don't see that, you'll not be able to understand.
यदि आप इन बातों को नहीं देखते, तो आप नहीं समझ पाएंगे.
The Bible is a unit.
बाइबल एक इकाई है.
Tells one great story.
एक बड़ी कहानी की.
And if you're not reading through the whole Bible,
यदि आप संपूर्ण बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं,
you will not understand the scriptures.
आप वचन को नहीं समझने पाएंगे.
Who wrote Romans?
रोमियो की पुस्तक किसने लिखी?
What book in the Old Testament did he use the most in writing the book of Romans?
पुराने नियम की कौन सी पुस्तक का सबसे ज्यादा वो उपयोग करता है रोमियो की पुस्तक लिखने में?
You are a preacher in India and you do not know these things?
आप भारत में प्रचारक हैं और आपको नहीं मालूम ये बातें?
You must read your Bible.
आपको अपनी बाइबल पढ़ना जरूरी है.
Every part of it.
हर एक हिस्सा उसका.
And you must live in it.
और आपको उसमें जीना होगा.
Because when you read something in the New Testament,
जब आप उस नए नियम में पढ़ते हैं,
it ought to bring to your mind something in the Old Testament.
और उसको आपके मस्तिष्क में कुछ पुराने नियम चलाना जरूरी
है. The problem with most preachers.
बहुत सारे प्रचारकों के साथ समस्या क्या है?
They don't know their Bible.
वो अपनी बाइबल नहीं जानते हैं.
I'm talking about they don't know it as a whole.
वो संपूर्ण बाइबल नहीं जानते हैं.
If I say the book of Amos,
यदि मैं कहूं आमोस की पुस्तक, उनको नहीं मालूम कहां है.
Who is Amos?
आमोस कौन है?
When did he preach?
कब उसने प्रचार किया?
What did he say?
क्या कहा उसने आखिर?
Obadiah.
Obadiah.
Obadiah. Is he in the Bible?
क्या वो बाइबल में है?
You need to read the whole Bible.
आपको संपूर्ण बाइबल पढ़ना जरूरी है.
And that will help you interpret the scriptures.
वह आपको वचन की व्याख्या करने में सहायता करेगा.
Because the Bible is a unit.
क्योंकि बाइबल एक इकाई है.
And if you don't see it's like a river.
वह एक नदी के समान है.
And it gets wider and wider.
वह चौड़ी होती और चौड़ी होती जाती है.
In the book of Genesis.
उत्पत्ति की पुस्तक.
It's very narrow.
बहुत सकरी है वो.
It's like the sun coming up in the morning.
और सुबह जैसे सूरज की रोशनी आती है.
Little light, more light, more light, more light.
थोड़ी रोशनी, फिर और अधिक, फिर और अधिक.
And everything that was written now, everything was written in the New Testament flows out of the Old Testament.
जो कुछ भी नए नियम में लिखा गया वो पुराने नियम से आता है.
And you must live in your Bible.
आपको आपके बाइबल में जीना आवश्यक है.
I will continue this discussion tomorrow.
हम कल इस पर और अधिक बात करेंगे.
I'll give you some more basic principles of interpretation.
हम आपको बाइबल की व्याख्या के कुछ और आधारभूत तरीकों पर बात
करेंगे. About three basic different kinds of messages.
Tomorrow?
Yes.
कल हम तीन विभिन्न प्रकार के संदेशों के विषय में बात करेंगे.
How to prepare them and how to preach them.
कैसे संदेश तैयार करें और कैसे उसको प्रचार करें.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
I want to ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.
Are you willing to work hard?
क्या आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं?
Not for 1 week.
एक सप्ताह के लिए नहीं.
But for the rest of your life.
आपके जीवन के अंत तक. बचे हुए जीवन भर.
And go deeper into the word of God.
परमेश्वर के वचन में गहराई में जाइए.
Remember James and John.
आप याकूब और यूहन्ना को याद कीजिए.
Sure, no problem.
कोई समस्या नहीं है.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
If you're going to properly interpret the Bible,
यदि आप बाइबल की सही व्याख्या करने जा रहे हैं,
you're going to have to work hard.
आपको कठिन परिश्रम करना होगा.
Well, let's pray.
आइए प्रार्थना करें.
Questions?
Yeah. कोई प्रश्न?
Like before we pray, are there any questions on what we said?
प्रार्थना के पहले कोई प्रश्न जो कुछ हमने कहा है उस पर?
Or questions on another subject?
Yeah.
Yeah. What was the subject?
एक प्रश्न था भाई रामसेवक का, उस पर थोड़ी देर बात करेंगे हम.
The question was this.
प्रश्न ये था.
What was the question, brother?
भाई बताइए, खड़े होकर बताइए. सब लोग समझ गए कि इंग्लिश में समझाने की जरूरत है. समझ गए. Lots of people want to live a holy life, but they have problem in situation. Sometimes they need to pay bribe. What to do in that situation? We want to live a holy life, but due to the situation in the world, sometimes we need to pay. Sometimes we need to compromise.
Ask you a question.
मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना
है. Is it permissible for a Christian to lie?
क्या मसीहियों के लिए अनुमति है झूठ बोलने की? No.
What if he tells the truth but it has bad results?
जब वो सत्य बताता है तो उसका परिणाम गलत होता है. ऐसे में क्या करें? बोलिए बोलिए.
You better think about that.
उसके विषय में जरूर सोचिएगा.
Number two.
दूसरा प्रश्न.
Is it wrong for a Christian to break the law?
क्या मसीहियों के लिए कानून तोड़ना गलत है?
Yes. Number three.
तीसरा प्रश्न.
Is it illegal in India to give bribes?
क्या भारत में घूस देना गैर कानूनी है? Yes. Yes.
Then what's your answer?
अब आपका उत्तर क्या होगा? गुरु भाई साहब.
You tell the truth.
आप सत्य सिखाइए.
You don't break the law.
आप व्यवस्था नियम को मत तोड़िए.
You're not conformed to the world.
आप संसार के अनुसार नहीं हैं.
And you trust God.
और आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए.
Even if you have to eat dirt.
हो सकता आपको धूल भी खानी पड़े.
You do the right thing.
आप सही काम कीजिए.
Even if it cost you your life.
हो सकता है इसके बदले में आपको जीवन की कीमत चुकानी पड़े.
You compromise in a little thing.
आप छोटी चीजों में समझौता करते हैं.
You tell a little lie.
आप छोटा झूठ बोलते हैं.
You say, well, if I don't give him some money under the table, then I won't get some benefit.
या आप ये कहेंगे कि यदि मैं मेज के नीचे से घूस नहीं दूंगा तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा.
In China,
चीन में,
there's more money that goes under the table than there is over the table.
ऊपर से जितना पैसा जाता है उससे ज्यादा मेज के नीचे से जाता है.
And that's the way China works.
और चाइना में इसी प्रकार से काम होता है.
If you don't give bribes, you can't survive in China.
यदि आप घूस नहीं देंगे तो आप वहां नहीं रह सकते.
Let me tell you about a woman I know.
मुझे एक महिला के बारे में बताने दीजिए आपको.
She went to China years ago.
एक साल पहले वो चीन गई.
And she wanted to help poor children.
वो गरीब बच्चों की सहायता करना चाहती थी.
A lot of people in China have babies and they sell them.
चीन में बहुत सारे लोगों के पास बच्चे हैं और वह उन्हें बेचते हैं.
That's how they make a living.
जिससे उनका जीवन चलता है.
Their wife will have 5 or 10 children.
एक पत्नी के पास में 5-6 बच्चे होंगे.
They sell.
वह उनको बेच देंगे.
This woman loves children.
ये महिला को बच्चों से प्यार है.
People try to sell her children.
लोगों ने उसको अपने बच्चे बेचने का प्रयास किया.
But she won't buy them.
लेकिन उसने नहीं खरीदा.
Then the government came to her.
तब सरकार उसके पास आई.
And they said this.
उन्होंने ये कहा.
If you give us a little money,
यदि तुम मुझे कुछ पैसा दोगी
We won't give you any problem.
तो हम आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे.
But she wouldn't do it.
लेकिन उसने कहा हम ये नहीं करेंगे.
And she has lots of problems.
और उसको बहुत सारी समस्याएं हुई.
But she has a conscience.
लेकिन उसके पास विवेक था.
And she has convictions.
और उसके पास कायलता थी.
And she won't tell a lie.
और उसने झूठ नहीं बोला.
And she won't give a bribe.
और उसने घूस नहीं दी.
And she's had lots of problems.
और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा.
She could buy many children.
वह बहुत सारे बच्चे खरीद सकती थी.
She could give lots of bribes.
बहुत सारा घूस देकर.
But she wants to keep a clean conscience.
लेकिन वह अपने विवेक को शुद्ध रखना चाहती थी.
And it's the same way in India.
और उसी प्रकार से भारत में है.
Now I know that lady.
मैं जानता हूँ उस महिला को.
I've been married to her for 41 years.
41 साल पहले मेरा विवाह हुआ उससे.
And she does the right thing.
वो सही काम करती है.
And if you're going to serve God,
यदि आप परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं,
you don't tell lies,
आप झूठ नहीं बोलेंगे,
you obey the law,
आप कानून का पालन करेंगे,
and you don't give bribe,
और आप घूस नहीं देंगे,
even if it costs you your life,
यदि चाहे उसकी कीमत आपकी जान खुद क्यों ना हो,
you say this,
आप ये कहेंगे,
well, you don't understand India,
भाई आप भारत को नहीं समझते.
I do understand India.
मैं भारत को समझता हूँ.
Because it's just like China.
ये भी चीन के समान है.
And I've been living over there for 15 years.
जहाँ मैं 15 वर्षों से रह रहा हूँ.
But I understand this book.
परंतु मैं इस पुस्तक को समझता हूँ.
Well, if you don't give us a bribe, you're going to have to move out of your house.
यदि आप हमें घूस नहीं देंगे, तो हम आपको आपके घर से बाहर कर देंगे.
You don't give us a bribe, your child cannot go to this school.
यदि आप घूस नहीं देंगे तो आपको बच्चा स्कूल नहीं जाएगा.
You don't give a bribe, you're going to lose your job.
यदि आप घूस नहीं देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी.
What are you going to do?
आप क्या करेंगे?
You need to think about these things.
आपको इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है.
But listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
If you tell a little lie,
यदि आप छोटा झूठ बोलेंगे,
next time,
अगली बार,
you tell a bigger lie,
और बड़ा झूठ बोलना होगा,
next time,
अगली बार,
you tell a bigger lie,
और बड़ा झूठ बोलना होगा,
next time,
और अगली बार, घूस देना पड़ेगा.
And your outward circumstances are good.
आपकी बाहरी परिस्थितियां ठीक रहेंगी.
But your conscience has been ruined.
लेकिन आपका जो विवेक है वो अशुद्ध हो गया.
And when you lose your conscience,
जब आप अपने विवेक का उपयोग करते हैं,
you can lose your soul.
आप अपनी आत्मा को खो सकते हैं.
Any other questions?
कोई दूसरा प्रश्न? जी.
अभी इससे पहले बता रहे थे कि जब अध्ययन करने के बारे में कि अगर जो व्यक्ति बाइबल में टाइम नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता सही से, तो उसको प्रॉफिट तो तय होने का कोई अड्डा नहीं. लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि बाइबल का अगर इंटरनेट से निकाले सकते सब कुछ विचार करते तो वो सही है या क्या उसके बारे में?
कैन यू समराइज इट?
यस यस. He's saying we have discussed about the if a preacher don't spend his time in the Bible, he should not stand here. And nowadays there is lots of preacher who read on internet and take the material and stand and preach. What to do? What to say?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
We certainly can use the help from others.
हम दूसरों से सहायता ले सकते हैं.
But your first responsibility.
लेकिन आपकी पहली जिम्मेदारी.
You are to study the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है.
Let me ask you this.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा.
What if you came to my house to eat dinner tonight?
यदि आज रात आप मेरे घर में आए खाना खाने.
And you came to my house.
और आप मेरे घर में आ गए.
And I wasn't there.
और मैं वहां.
I was not there.
मैं वहां नहीं हूं.
And you asked my wife.
और आपने मेरी पत्नी से कहा.
Where is Brother Andy?
Brother Andy कहां है?
He's outside going in different people's garbage cans looking for trash. Garbage.
हाँ समझ रहा. आई अंडरस्टैंड, वो बाहर गए हुए हैं बहुत सारे लोगों के कूड़े दानों में से खाना बटोर रहे हैं, जूठन बटोर रहे हैं। ये आपको खाना दे सके।
A lot of preachers are like that.
बहुत सारे प्रचारक उसी प्रकार हैं।
They don't cook their own food.
वे अपना खाना नहीं बनाते।
They're always digging around in a garbage can.
वे कूड़ेदानों में ढूंढते रहते हैं।
Or they do this.
और या तो वो ये करेंगे।
They say, well, tomorrow I got to preach on John 3.
मुझे योहन्ना 3 पर कल प्रचार करना है।
They go to the internet.
और वे जाएंगे इंटरनेट पे।
Here's a whole sermon on John 3.
यहाँ पर योहन्ना 3 पर पूरा संदेश है।
They turn on the copy machine.
और फिर वो उसको कॉपी करेंगे।
Push the button.
और बटन दबाएंगे। और प्रिंटर में आ जाएगा।
Bring it into the church.
और वो चर्च में लेके आएंगे उसको।
Brethren,
भाई लोग,
I have a word from God.
मेरे पास परमेश्वर की ओर से वचन है।
I studied all week.
मैंने पूरे सप्ताह अध्ययन किया।
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए।
You do your own work.
आप अपना कार्य कीजिए।
Maybe all you can give them is a little rice and a little vegetables.
हो सकता है आप थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा चावल ले लें दूसरों से।
But at least it's your own food.
लेकिन ये आपका खाना होना चाहिए।
And you can learn how to study.
और आप सीख सकते हैं कि कैसे अध्ययन करें।
Preachers are lazy.
प्रचारक लोग आलसी हैं।
They're ignorant.
वे
ignorant.
अनजान हैं।
They don't want to pay the price.
वे कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं।
They want to go and get somebody else's food.
वे दूसरे के खाने में से ढूंढ रहे हैं।
And then they warm it up on their own stove.
तब वे अपने चूल्हे में आके गर्म करेंगे उसको।
Then they serve it again.
फिर वह उसको दे देंगे लोगों को।
It is it proper permissible to use commentaries?
क्या जो टीका है, टीका की पुस्तकें इस्तेमाल करना की अनुमति है आपको?
Of course it is.
हाँ है।
Of course.
हाँ।
But
लेकिन
यू डू योर ओन वर्क फर्स्ट,
आप पहले अपना काम कीजिए,
देन यू लुक एट कमेंटरी,
तब आप कमेंट टीका में देखिए।
मोस्ट प्रीचर्स,
बहुत सारे प्रचारक,
दे ओपन द बाइबल,
बाइबल खोलेंगे,
दे लुक एट अ वर्स,
एक पद पर देखेंगे,
दे डोंट अंडरस्टैंड,
वे समझ नहीं पाएंगे उसको, दे
रन टू द कमेंटरी,
और फिर वो टीका में जाएंगे, दे
ओपन इट अप,
फिर वो देखेंगे।
And what happens?
क्या होगा?
They never learn to study for themselves.
वे अपने लिए अध्ययन करना कभी नहीं सीखेंगे।
And they become dependent on a commentary.
और वे जो टीका है उस पर निर्भरता सीख लेंगे।
And they're not willing to work hard.
वे कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं हैं।
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए।
Do your own work.
अपना काम कीजिए आप।
It may be a little rice and a little vegetables.
हो सकता है आपको कई बार वो थोड़ा सा चावल और थोड़ी सब्जी हो।
But if you're called by God,
यदि आप परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं,
you can learn to prepare simple, useful message.
आप सरल और उपयोगी संदेश तैयार करना सीख सकते हैं।
But many preachers,
बहुत सारे प्रचारक,
have the bad habit.
कि बुरी आदत है।
They've run the commentary so long.
वे बहुत जल्दी टीका की ओर जाते हैं।
They look at a verse.
वे एक वचन को पढ़ेंगे।
They run to the commentary.
और वह टीका में जाएंगे।
They look at a verse.
एक वचन यहाँ पढ़ेंगे।
The commentary.
फिर टीका में जाएंगे।
One day.
एक दिन।
Their little boy.
एक छोटा बच्चा।
Picks up the commentary.
टीका एक
Throws it out the window.
फेंक देता है।
You look at the verse.
आप बाइबल वचन पढ़ते
हैं
और जाते
If you don't learn to study yourself,
यदि आप स्वयं अध्ययन करना नहीं सीखते,
pay the price,
कीमत चुकाइए,
work hard,
कठिन परिश्रम कीजिए,
be willing to study,
कठिन अध्ययन कीजिए.
It may be just a few little crumbs of food.
हो सकता वो थोड़ा सा खाना हो.
But it's your own food.
लेकिन वो आपका बनाया हुआ है.
And you can learn how to cook a better meal.
और आप सीख सकते हैं कैसे अच्छा खाना तैयार करें.
But if you don't work,
यदि आप काम नहीं करेंगे,
if you don't pay the price,
और आप कीमत नहीं चुकाएंगे,
you'll be dependent upon others.
आप दूसरों पर निर्भर होंगे.
Can we use commentaries?
क्या हमें टीका का इस्तेमाल करना चाहिए?
Yes.
हाँ.
But after you try to do your own work.
लेकिन आपका कार्य करने के बाद में.
You willing to do that?
क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं?
Any other question?
कोई अन्य प्रश्न?
Well, we need to close.
अब हमें समाप्त करने की आवश्यकता है.
Tomorrow we'll talk some more about this.
हम कल और अधिक इसके विषय में बात करेंगे.
This is very basic and very practical, but very necessary.
ये बहुत आधारभूत, व्यवहारिक और आवश्यक है.
Well, let's pray.
आइए प्रार्थना करें.